जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
ओम अशरण शरण शरण प्रभुले
ओम अशरण शरण शरण प्रभुले।
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
गुरु राखहि जो को पविधाता वचन प्रतीतन जाई
गुरु के वचन प्रतीतन जाई।
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई।
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
पिया तोरी उचिरे अटरिया। अमृतवाणी के इस चरण में परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के शब्दों में उपपद की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत है। इस व्याख्या का संकलन हमने 27 फरवरी 1995 को लमेटाधार आश्रम में जबलपुर की जनसभा में महारुद्र यज्ञ के अवसर पर किया था।
तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली ऊंची अटरिया जग किनरिया लगल नाम की डोरिया चांद सूरज सम दियना बहुत हो ताबिच भूली डगरिया की सया। तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली पांच पचीस तीन घर बनी मनुआ है चौधरिया मुंशी है कुतवाल ज्ञान को चमदिसी लगल बजरिया की सया। तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली आठ कोठड़िया नव दरवाजा दशवें बंध की वड़िया खिड़की बैठी गोरी चितवन लागी लग गई झाप झलरिया की सया। तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु के बचन बलि हरिया चतुर लोग मिली सौदा करी है झंकत मूर्ख अनरिया की सया। तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली। ये कबीर का एक भजन। कबीर एक सब महापुरुष थे जैसे अनादिकाल से होते आए हैं सूर तुलसी अनंत योगेश्वर हुए हैं वशिष्ठ विश्वामित्र अगस्त दत्तात्रेय उसी परंपरा के एक महापुरुष। और जब कबीर अपनी स्थिति में आए तो लोगों की भीड़ पीछे चलने लगी तो कबीर अच्छे कबीर महात्मा उनकी वाणी में ओझ है उनका दिया हुआ रास्ते पर हमें प्रगति मिली उनसे ये कल्याण हुआ वो कल्याण हुआ तो कबीर बिगड़ा क्या कबीर कबीर रट लगाए। कबीरा कबीरा क्या करे शोधो सकल शरीर आशा तृष्णा बस करे सोई दास कबीर। क्या कबीर महात्मा कबीर अच्छे रट लगाए पड़े हो शोधो सकल शरीर। सकल शरीर का अर्थ कई शरीर होना चाहिए एक स्थूल शरीर ही पंचभौतिक है उसके अंतराल में सूक्ष्म शरीर जो मन का संसार है उसके अंतराल में कारण की जिसके द्वारा ही जिंदे रहते हैं आत्मिक कोष कर्म जो सबका कारण है कर्म सा तीनों शरीरों की शोध प्राप्त कर लो, किंतु आशा और तृष्णाओं में रहते हुए ये शोध संपन्न होती नहीं। इसलिए आशा तृष्णा बस करे सोई दास कबीर, इतना हमने किया है, इतना यदि तुम कर लो तो तुम कबीर हो। कबीर एक सगुण उपासक थे, साहिब का उनकी वाणी हटात समझ में नहीं आती, तब लोगों ने कह दिया भाई वो तो निर्गुण कथन कर दिया, ये तो कबीर की उलटवासी है। लेकिन कबीर के करीब 95% पद ऐसे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, वो जानते थे जिस गहराई की बात मैं कहता हूं सबको समझने की क्षमता हो ही नहीं सकती। इस मानव समाज में जिनमें उस क्षमता पाई गई वो थे संत, अवधु, कोई पंडित ज्ञानी, इनको उद्देश्य बनाकर वाणी की पूर्ति किया। वो जानते थे कि ये उस पथ के पथिक हैं, वो जानेंगे, इसलिए हटात समझ में नहीं आती। और क्योंकि वैदिक तथ्य को छिपा कर व्यक्त किया तो उलटवासी नहीं है। उलटवासी का अर्थ लोग बताते हैं कि जिसके बहुत से अर्थ हो, आप कहो वो सही, हम कहें वो भी सही, वैसो ज्ञापन पढ़ वो ज्ञापन, ये कोई अर्थ हुआ? मान लो हमें जबलपुर जाना, कोई कहता है कि पार कर जाओ नदी और निकल जाओ, उधर है जबलपुर, इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? अर्थ उसे कहते हैं सारे अनर्थों से बचाकर हमें प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दे। कबीर कोई भाड़ तो थे नहीं कि लोक रिझाने के लिए उटंग पुटंग रचते फिरे, एक महापुरुष थे, महापुरुष को फुर्सत कहां, तो सगुण उपासक थे, छिपाकर व्यक्त किया इसलिए समझ में नहीं आती। तो साहिब का घर दूर लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस गिरे तो चकनाचूर। परमात्मा का घर कहीं बहुत दूर है, अपने अलग खड़ा है, खजूर का उदाहरण दिया, चढ़े तो चाखे राम रस गिरे तो चकनाचूर। भगवान अलग, अपने अलग, चढ़ना और गिरना लगाई हुआ है। आप ही बताओ इस सगुण उपासक के और क्या लक्षण होते हैं? यही तो कि प्रभु अलग और खोज बाकी है, वो सगुण उपासक थे। और निर्गुण कोई उपासना नहीं, निर्गुण तो प्राप्ति के पश्चात संतों की एक रहनी। कबीर चलते चलते रोते गाते जब मंजिल पर पहुंचा, गुणातीत स्थिति का दिग्दर्शन पाया, तो अवधु वेगम देश है मेरा, तहां नहीं उपजे मरे न बिन से नहीं न काल का फेरा, तहां नहीं ईश्वर जीवन माया पूजक पूजन चेरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो नहीं तहां द्वैत बखेड़ा। कबीर कहता है निर्गुण, निर्गुण की परिभाषा देते हैं, अगम्य है, वेगम है मेरा देश, अनिर्वचनीय है मेरा देश, तहां न उपजे न मरे न बिन से, वहां काल का आना जाना नहीं, वहां न ईश्वर न जीव न माया नहीं, पूजने योग्य पूजक पूजन चेरा, पूजने योग्य कोई सत्ता नहीं, पूजने वाला कोई पथिक नहीं, तो भला कौन भजन करेगा और किसका करेगा, मूलते वहां बचा क्या? तो कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो नहीं था द्वैत बखेड़ा, वहां द्वैत का बखेड़ा नहीं, मेरा अस्तित्व है, मैं हूं, मुझसे भिन्न कोई सत्ता नहीं। हर महापुरुष निर्गुण सगुण से ही चलता है और प्राप्ति काल में प्रकृति के 17 तीनों गुणों से अति त्रिगुणातीत जो रहनी है वो निर्गुण कहलाता है, वो अद्वैत अभिन्न स्थिति का नाम निर्गुण। सभी जानते हैं तुलसीदास सगुण उपासक थे, तो निर्गुण रूप सुगम मति सगुण न जाने कोई, सगुण अगुण नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होई। तुलसीदास कहते हैं निर्गुण रूप अत्यंत सुगम और सगुण कोई जानता ही नहीं, लाखों मंदिर उनके पास थे, लाखों पुजारी उनके सामने थे, खुद भी ठाकुर जी गले में लटका के कुछ दिन तक भ्रमण करते रहे, इसके बाद भी कहते हैं सगुण कोई जानता ही नहीं, ये सगुण उपासना नहीं है। सह माने वह परमात्मा और उन ईश्वरीय गुण धर्म का संचार हमारे हृदय में हो जाए, उस दिन से उपासना की शुरुआत होती है। सभी संत हैं राम के, सब ही राम की आस। निर्गुण राम प्रसाद भय, सरगुण राम प्रसाद भय, निर्गुण पलटू दास। सभी संत सभी भक्त राम के, राम ही से आशावान है, आस लगाए हुए हैं, किंतु राम का सगुण स्वरूप सरगुण राम प्रसाद। वेखरी मध्यमा प्रशंति और परा, एक ही नाम को चार श्रेणियों से जपा जाता है। हमारा चिंतन कर्म सा तीसरी वाणी पार करने लगे, परावाणी साध्य अवस्था में आ जाए, तुरंत भगवान बोलेंगे, उठेंगे बैठेंगे, चलाएंगे सुलाएंगे, भजन कराएंगे। जहां वो उतर आए, जिस सत्य पर हम खड़े हैं और जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो हमारी पुकार हमारी लगन ऐसी हो, संयम ऐसा हो, समर्पण के साथ वो उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाए और हमारा मार्गदर्शन करने लगे। जिस दिन से प्रभु रथी हो जाते हैं, वो भजन करवाने लगते हैं, उसी दिन से उसी पल से सगुण उपासना की शुरुआत है। इसलिए ये जागृति किसी सदगुरु से संभव है, हठात कोई जानता है। इसलिए तुलसी कहते हैं कि सगुण जान नहीं कोई, सगुण कोई जानता ही नहीं। न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेदिया न बहुने सुरते, न यमे वेख विरणते। न ये आत्मा प्रवचन से प्राप्त होती है, न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होती है। करोड़ों भक्तों में से जिस किसी एक का वो परमात्मा वर्ण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वही उनके निर्देश में चलकर परमात्मा तक की दूरी तय करता है। यही है जाके रथ पर केशव, ताका कौन अंदेशो। ये जागृति किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही संभव है। सीधा न तो तीर्थ प्रदान करेगा, न मंदिर प्रदान करेगा, न पुस्तक पाठ प्रदान करेगा, न गायत्री। गुरु महाराज की शरण में आए हमें 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने के पश्चात एक बार पूरा नीचे से ऊपर तक आधा आधा इंच की दूरी पर अंग फड़कने लगा, उसी के अनुरूप कुछ अनुभव दिखाई देने लगे। हमने सोचा रोग, आखिर ये है क्या, खुटपट खटपट। तो हमने पूछा, भगवान कोई रोग तो नहीं हो गया? जब पूरी विवरणवार बताया तो बोले, बेटा भजन चालू हो गया, राम रावण युद्ध स्टार्ट हो गया, अब रावण मरेगा, राम का राज्याभिषेक होगा, इसके बाद ही ये बंद हो गया बेटा, आज से साधना शुरू होगी। वही उस जिस दिन से शुरू होता है, गुरु हृदय में जब स्थान घर बना लेता है, उस दिन से भजन की शुरुआत। इसलिए सगुण जानने कोई, कोई जानता ही नहीं। तुलसीदास को सभी जानते हैं सगुण उपासक, लेकिन अंत में पाए तो किस रूप में पाए? तो श्री हरि कृपा संत समागम पाइए, सपने नहीं दुख द्वेत दर्शन बात कोटि को कहे। तुलसी कहते हैं विनय पत्रिका में, हरि की असीम अनुकंपा से कोई संत के समानांतर स्थिति पाता है, जहां सपने में भी द्वेत का आभास भी नहीं, कौन किरोड़ों दलील देता फिरे। द्वेत माने हम अलग और हमारे भगवान अलग हो। तो कबीर ही कौन कुलाड़ी मारता है? कबीर कहता है कि नहीं था द्वेत बखेड़ा, वहां द्वेत का बखेड़ा नहीं है। तुलसी कहता वहां द्वेत का दर्शन नहीं है। बात तो एक ही हुई ना, जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वेत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा। कदाचित ये मन विकारों का त्याग कर दे तो द्वेत से उत्पन्न अपार संस्कृति का दुख शोक और संता भला क्यों रह जाए। जब तक मन विकारों से युक्त है तब तक द्वेत है, मिटा तो सब द्वेत का आभास भी नहीं। और प्रश्न लंबा नहीं करना, शॉर्ट में करते हैं। कबीर के चिंतन का नाम राम था। राम नाम जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इधर अपार जीवों की श्रृंखला और उधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता, कबीर किसी को नहीं जानता, एक राम नाम की आस, एक राम नाम से आशावान। कबीर के चिंतन का नाम राम था, लेकिन राम नाम में अंतर और कहीं हीरा कहीं पत्थर वाली समस्या भी है इसमें। इस पर बल देते हुए कहते हैं कि राम नाम दुर्लभ यति और एते नहीं काम, आदि अंत युग युग राम हिते संग्राम। राम नाम अत्यंत दुर्लभ, दुर्लभ है तो क्यों झंझट मोड़ लेते हो, छोड़ो झंझट, क्यों पचड़े में पड़ते हो? तो कहते हैं पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे नहीं काम, दूसरी किसी विधि से कल्याण संभव नहीं है। इसलिए आदि माने भजन की शुरुआत, अंत माने प्राप्ति काल, इसमें चाहे युग युगांतर लग जाए, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, भरू न तो संभु न तो रहूं कुंवारी, चाहे जन्म जन्मांतर लग जाए, राम ही सो संग्राम, यदि झगड़ा है तो राम से, यदि राम से झगड़ोगे तो रामत्व तो पा जाओ, जीवों से झगड़ोगे तो जीवों के बदले पा जाओ, इसलिए झगड़ा ही करना तो प्रभु से करो ना, वो कभी रुष्ट नहीं होंगे, आपकी लात वहां तक पहुंचेगी ही नहीं, बल्कि आपके भाव पहुंचेंगे, हृदय के उद्गार पहुंचेंगे कि भला सब छोड़ के मुझसे तो लड़ रहा है। और राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तासु, नैनने आवे नींदरी अंगन जामे मासु। कबीर का कहना है राम नाम को जिसने पहचाना, यदि राम 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 इतना ही होता तो पहचानने की क्या बात है, तो सभी जानते हैं उसकी गहराई, उसके स्वरूप को हृदय में श्वास में जागृत पाया, जिसने प्राप्त किया, जिसने पहचाना, झीना पिंजर जासू, उसका पिंजर झीने हो जाते हैं, न तो रात नैनों में नींद रहती है, न अंग में मांस जामता है। विरही को भला भरत की तरह चैन का, जो दशा भरत की है राम नाम के जाप में, वही दशा कबीर के चिंतन की है। कबीर के चिंतन का नाम राम था, वो एक सगुण उपासक थे। कबीर से जब भजन तो प्रभु का ही करते थे, लेकिन किसी ने पूछा हजरत क्या कर रहे हो, बोले मैं उस प्रिया को मना रहा हूं, प्रियतम मोशन रूठन हो, साईं प्रियतम पति कहकर संबोधित किया, प्रिय उत्तम से प्रियतम, जो प्रीति का सर्वोपरि माध्यम है, एक बार संबंध जोड़ लेने के पश्चात फिर कभी बिछोड़ नहीं होगा, आप कभी नहीं बिछोड़ोगे, इसलिए प्रिय उत्तम कहकर संबोधित किया परमात्मा को। साईं माने मालिक होता ही है, पति मेरी पत रखो गिरधारी, मीरा ने कहा मेरी पत रखो। एक बार मीरा के पति भोजराज राणा मरे, संसार में तो व्यवहारिक जगत में सभी को जीना पड़ा है, तो राम मीरा से कहा कि तुम सती हो जाओ, बोले क्यों, बोले तुम्हारा पति मर गया है भोजराज राणा, तो ऐसे पति को क्यों करूं जो जन्मे मर जाए, मीरा अविनाशी वर सुहाग अमर हो जाए, भला ऐसे पति का मैं वरण ही कब करने गई जो जन्मे और मर जाए, जन्मे और मर जाए। मीरा ने उस अविनाशी का वरण किया, हमारा सुहाग हमारा चूरा हमारा ललाट सदा अमर, औरों के प्रिया परदेश बसे, लिख लिख भेजे पाती, और हमारे प्रिया हमारे हिये में बसते हैं, नहीं तो जाति ने आती। तो पत कहते हैं मेरी पत राखो गिरधारी, पत कहते हैं इज्जत को, बाहर वाले पति के साथ तो जली ही नहीं, फिर भी कहते हैं मेरी पत रखो, पत कहते हैं मर्यादा को, इज्जत को। आज किसी के दो खरी खोटी सुना दिया, इज्जत हल्की हो गई, दो थपड़ा मार दिया, दुगनी हो गई। शादी विवाह में आजकल ऐसा क्रमकांड फैला है, उनको मोटरसाइकिल चाहिए, कदाचित नहीं मिली तो हल्की हो गई, कहीं मारुति पकड़ा दिया तो चौगनी हो गई, और शरीर छूट गया तो इज्जत यहीं रह गई, और नया जा शरीर मिला नया ही संसार और नया ही विकास। इसलिए संसार सदैव असुरक्षित है, हम तीन दिन के पड़ाव पर ही मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, करते बने तो पहचानो अपने आप को, अपनी आत्मा को, और नहीं तो ये तो छूट ही जाए। ये इज्जत तो आई और गई, अंत में भी नश्वर शरीर के साथ सब सोई पुर पाटन, बहुरी ने देखा आई, फिर लौट के कोई नहीं देखता, लेकिन ये आत्मा विशुद्ध ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आपके हृदय में जो आपका स्वरूप है वो सहज सुख की राशि है, अविनाशी तत्व है, ऐसा अकाट्य है, अशोक्य है, अपरिवर्तनशील है, अमृत स्वरूप है, शाश्वत और सनातन है आत्मा, गीता के अनुसार मानस के अनुसार। ऐसा विशुद्ध स्वरूप होते हुए भी हम बारंबार गर्भवास की यातनाएं झेल रहे हैं, मलमूत्र पीप से सनी हुई अनंत योनियों का भ्रमण कर रहे हैं नीचे ऊपर, इस दयनीय दशा से उबार कर हमें मर्यादित स्वरूप प्रदान करने में सक्षम कौन है, भगवान। इसलिए परमात्मा को पति कहकर, पत रखने वाला होने से पति कहकर संबोधित किया, मेरी पत रखो गिरधारी, पति का इसी आशय का भजन है कि पिया तुरी उचिरे अटरिया अब देखत चली। कोई भजन चेतावनी का है, कोई भजन साधना काल का है, कोई भजन उस स्तर का चित्रण है जहां विद्या सिद्धियां ईश्वर का दरबार झलकने लगा, ईश्वर की विभूति झलकने लगी। राम प्रताप समुझ कपि कोपा, सभा माझ पन कर पद रोपा। अंगद को प्रभु का प्रताप झलकने लगा तो रावण को उसने कुछ नहीं समझा और कामयाब। कबीर को भी प्रभु की महिमा झलकने लगी तो पिया छोरी इस स्तर से भजन है पूर्ति पर्यंत का। जब से प्रभु की महिमा, प्रभु की विभूतियों का दिग्दर्शन होने लगा, इससे लेकर स्थिति पर्यंत का चित्रण है इस भजन में। तो पिया तोरी चीरे अटरिया अब देखत चली। भगवान आपकी अटारी ऊंची अब देखत चली। केवल अटारी दिखाई देते हैं भगवान, वो भी नहीं। प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, सत चेतन घन आनंद राशि। प्रकृति है नीचे और परमात्मा है ऊपर। प्रकृति से उपराम आपका निवास है, आपका निवास आकाशवत है, संकल्प विकल्प से रहित शांत सम्य है। अब देखत चली प्रभु आपकी अटारी दिखाई देती, आपका निवास दिखाई देता है, लेकिन चली चलना बाकी। मान लो वहां हम आगे आश्रम दिखाई ही पड़ गया तो क्या पूर्ति हो जाती है जब तक कि अंदर प्रवेश करके दर्शन नहीं कर ले। तो भगवान आपकी रैनी आकाशवत, आपकी रैनी प्रकृति के पार है, अब देखत चले। अब वो आपका निवास दिखाई दे रहा है लेकिन चली चलना शेष है। अब और तब में पूर्व पश्चिम का अंतर, किसी कन्या का जन्म, कन्या की शादी जब हुई समय आया तो कहीं घर अनुकूल नहीं, घर मिला तो वर अनुकूल नहीं, वर भी मिला तो समधी रूठ गए। हमको मोटरसाइकिल दो, हमको मारुति दो, हमें साइकिल दो, किसी तरीके से बीघा बिस्वा बेच के कन्या के हाथ पीले करते बन गया। तब भी समधी ऐठ गए, हमारे साथियों का स्वागत कम हुआ। किसी तरीके से 10 कदम विदा करते बन गए तो बोले यार अब कहीं जान में जान आई। जब कन्या जन्मी थी तब नहीं, जब पढ़ा पढ़ा के मुन्नी मुन्नी घर सिर पे हाथ फेरते थे तब भी नहीं, जब शादी ढूंढते थे तब भी नहीं, जब 4 कदम विदा करते बन गए। अब शब्द कार्य की पूर्ति का द्योतक है। अब और तब में पूर्व पश्चिम का अंतर है, एक वो छोर और एक ये छोर। खेत की मेड़ पर खड़े थे, साधारण की सी बात में तकझक हो गई, लाठी चल गई, चले झूठे सच्चे मुकदमे, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, किसी तरीके से प्राण बच गए। भैंस गाय बैल बदिया बेच के 4 बीघा नीलाम करके किसी तरीके से जिंदे लौट आए, बोले यार अब कहीं जान में जान आई। जब आंखें तिरछी कर रहे थे तब नहीं, तो कबीर जब वहां लहर तालाब पर काशी के दशाश्वमेध घाट पर शरण में गया महापुरुष की, प्रभु शरण में रखते, बोले तब नीच जात कहीं का, मेरे पास तो कुलीन कुलीन बैठे हैं। वो महापुरुष थे भगवान रामानंद, उनको कोई भेद नहीं था, लेकिन हर आश्रम में 4 ठेलुआ हुआ करते। उन्होंने नाक भौं सकोड़ना शुरू किया, गुरुदेव कबूरुआ को न रखें, ये तो जुलाहे के धर्म पला है ना। गुरुदेव ने बोले तो कुछ नहीं लेकिन चुप रहे। तो सोचा कबीर संस्कारी थे, जन्म जन्मांतरों से चलने वाला पथिक था, तुरंत उसने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। तो वो दशाश्वमेध घाट पर सीढ़िया पर लेट गया और गुरु महाराज सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने आया करते थे, हाथ में माला थी, जहां पांव रखा कबीर के पेट पर, बोले अरे बच्चा राम राम करो, राम राम करो, बोले बस गुरु महाराज रामे राम रामे राम, आज हम मंत्र पा गए। बोले अरे कबीरवा तू, तो बोले हाँ गुरु महाराज। बहुत खुश हुए, छाती से लगाया, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया और रामानंद के पवित्र शिष्यों में से 3 ही 4 निकले, कबीर रैदास विशुद्धानंद ऐसे और विठल पंत जिनके शिष्य हुए हैं ज्ञान संत ज्ञानेश्वर उनके पुत्र हुए। बस तो जब सीढ़िया पे पढ़ के और भीख मांग रहा था मंत्र की कृपा की याचना कर रहा था तब नहीं, रस्ते में माया महा ठगनी हम जानी, जब माया से भयभीत था तब भी नहीं, अब एक इस तरह ऐसा आ गया चिंतन का कि भगवान आपकी अटारी में देखत चले, आपकी रैनी आकाशवत है प्रकृति से पार है, अब इस अटारी तक दूरी आपने कैसे तय किया, उपाय क्या है, क्या हम भी चल सकते हैं, इस पर कहते हैं तो ऊंची अटरिया जर्द किनरिया, आपकी अटारी आकाशवत प्रकृति पार है तो वहां तक की दूरी कैसे तय किया, जर्द किनरिया, जर्द कहते हैं योग को, योग अति सूक्ष्म है, वो वाणी का विषय नहीं, चिंतन में अनुभव जन्य प्रक्रिया है, तो योग अत्यंत सूक्ष्म है, जर्द किनरिया योग का किनारा पकड़कर लगल नाम की डोरिया, उस योग का सहारा लेकर ही योग के कई अंग हैं, सारे अंगों को भली प्रकार अनुष्ठान करके अत्यंत जरद अत्यंत सूक्ष्म पथ है, उस पथ का आश्रय लेकर योग में तो बहुत से अंग है लेकिन प्रमुख अंग है नाम जप, तो लगल नाम की डोरिया नाम में सूरत की डोरी लगाकर हम यहां तक की दूरी तय कर लेंगे, अटारी के करीब पहुंच गए और जहां करीब पहुंचे अटारी दिखाई देने लगी तो कुछ विघ्न आए, चांद सूरज सम दियना बहुत है ताबिच भूली डगरिया की सैया तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली, जहां करीब पहुंचे तो चांद और सूरज के समान बहुत से दीपक दिखाई पड़े, तो उनके चकाचौंध में रास्ता भटक के आप घोर अंधेरे में है कोई दिया दिखा दे आप रास्ता पा जाए, कबीर करीब पहुंचा तो चांद और सूरज के समान दिव्य दीपक दिखाई पड़े, कबीर रास्ता भटक गए भला ये कौन सा दीपक, तो छोरत ग्रंथि जान खगराया विघ्न अनेक करहि तब माया, कलबल छल करी जाहि समीपा अंचल बात बुझावई दीपा, माया सोचती है बेटा हमारे चंगुल से मुक्त हो जाना चाहता है, ता फिर अनेक विघ्न उपस्थित करती है, माया परीक्षा लेती है, कल बल छल करी जाए समी का, कल करेगी बल करेगी छल करेगी, और इतने पर भी बेटा चंगुल में नहीं फंसे तो रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावई जाए, वो रिद्धियां प्रदान कर देगी यहां तक कि सिद्ध बना देगी, और जहां स्पर्श किया तो छूटी न ग्रंथि मिटासो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा, जो दीपक दिखाई पड़े वो भी बुद्ध गए और बुद्धि विषय रूपी वायु के झोंके में विकल हो गई और वो अटारी का दिखाई देना बंद हो जाता है, तो माया अनेक विघ्न करती है यहां तक कि वो रिद्धियां प्रदान कर देगी सिद्ध बना देगी, सिद्ध भगवान कभी नहीं बनाते, भगवान के दर्शन के साथ तो परम सिद्धि है, नैष्ठिकीन सिद्धि है उनकी प्राप्ति और रही, ये छुटपुट सिद्धियां तो माया चारा फेंकती है, माया रिद्धि सिद्धि प्रेरणी बहु भाई चारा फेंकती है उन रिद्धि और सिद्धियों के चकाचौंध में जहां साधक फंसा ता छूटी ने ग्रंथि मिटासो प्रकाश, यही दीपक है, इसमें भूले मूढ़ न चतुर नर बड़े बड़े चतुर भूल जाते हैं, इन्हीं दीपकों के चकाचौंध में सिंगी ऋषि भूल गए पारासर भूल गए, सिद्धियों के झांसे में दिन का रात बना दिया पारासर ने, बैठी गंगा के बाढ़ के प्रवाह में नाव स्थिर होगी बालू प्रकट हो गई लेकिन दुर्जय शत्रु को नहीं जीत पाए, इतनी बड़ी सिद्धियां तो थी, तो इसलिए ये रिद्धियां सिद्धियां मान सम्मान ये चांद और सूरज के समान आकर्षित करने वाले दीपक दिखाई पड़े, ताबिच भूली डगरिया इन्हीं के चकाचौंध में साधक भटक जाता है, जहां साधक ने स्वीकार किया कि हमारे द्वारा हो रहा है तहां ग्रंथि भी नहीं छूटी प्रकाश भी मिटा, माया पतित करने भर की सामने आती है कहो सदा मिले तो नहीं, तो प्रिया तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली, जब हमें ज्ञान है कि ये धोखा है ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है ये क्षणिक है, ये माया का फेंका हुआ जाल है, तो साधक संभलेगा, पार हो गया और अगल और भगवान आपकी रहनी आकाशवत है। चित भजन करते करते संकल्प विकल्प से रिक्त शांत सम, जब तक आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को, चित्त में जब भजन में बैठो तो संकल्पों की लहर पैदा हो जाती है, वो लहर शांत हो जाए, सम स्थिर चित्त टिकने लगे, तुरंत प्रकृति का संबंध टूट जाता है, परमात्मा के धरातल में पांव पड़ जाता है और अटारी दिखाई देने लगती है। इसी का चित्रण है। अगले पद में कहते हैं कि ये सौदा सबके लिए सुलभ है कि आप ही पाए। तो पांच पचीस तीन घर बनी मनवा है चौधरिया, पांच तत्व जिनसे क्षिति जल पावक गगन समीर, जिनसे सबका स्थूल शरीर बना है, इसका निर्माता है। पांच तत्व है, पच्चीस प्रकृति, पांचों का पांचों में समावेश है, जहां समावेश हुआ तो हलन चलन पैदा हो जाती है। पांच तत्व है, पच्चीस प्रकृति और तीन गुण, त्रिगुणमयी प्रकृति, यही व्यापार स्थली है। इसी में ये शरीर आपको मिला है, चाहे सौदा करके नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ। मनुष्य कर्मों का निर्माता है, कर्मों के आश्रित कदापि। एक सिपाही गांव में आ जाता था पुराने जमाने में, तो गांव भर भाग के घरों में घुस जाता था। तो मुंशी और कुतवाल जो शहर का कंट्रोल करने वाला था, तो इस व्यापार स्थली को, पांच तत्व पच्चीस प्रकृति तीनों गुणों को और इनके चौधरी मन को संयमित करने की क्षमता है। तो ज्ञान में, ज्ञान एक ईश्वरीय अनुभूति के संचार का नाम है, ज्ञान हरि प्रेरित है, इसके विपरीत है तो अज्ञान, एक अलग प्रश्न है। तो ज्ञान का मुंशी है, कुतवाल है, और सबके अंदर उस ज्ञान का सूत्रपात है, चौदिस लगल बजरिया। हम ही पाए हैं, ऐसी बात नहीं, आप लोग भी इसमें से वो सौदा पा सकते हो, ईश्वर की अटारी का दर्शन और प्रवेश। भगवान आपकी रहनी आकाशवत है, प्रकृति पार है, अब देखत चली, अब अटारी तो दिखाई देती है लेकिन चलना शेष है, जब तक मिल न जाए। अगले पद में कहते हैं, आठ कोठड़िया नव दरवाजा, दसवें बंध की मड़िया, अष्टामूल प्रकृति। पीछे जो प्रकृति का चित्रण है उसका शॉर्ट में चित्रण है अष्टामूल प्रकृति, पांच तत्व और तीन गुण, हो गए आठ ना। तो ये आठ कोठड़िया है, आठ कोठड़िया बहत्तर ताला, ताबस जीव घूमे निराधारा। आठ कोठड़िया नौ दरवाजा, ये अष्टामूल प्रकृति, लेकिन प्रकृति के शुभाशुभ भोगों को भोगने के दरवाजे हैं नव द्वारे। नव द्वारे पूरे देही, नव दरवाजों वाला जो आपका शरीर है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, जबान टेस्ट करती है, ये नव दरवाजे, इन दरवाजों से ही उपभोग करता है। और दसवें बंध की मड़िया, ज्ञान के कुतवाल के द्वारा सने सने उत्थान होते हुए अष्टामूल प्रकृति और इनके नव दरवाजे, नव ज्ञान इंद्रिय जो है, इनको जहां संयमित किया, यहां तक तो साधक का साधना चलेगी। और लगी नाम की डोरिया, नाम की, नाम में सूरत की डोरी लगाकर हम दूरी तय करेंगे, लेकिन दसवां द्वार है ब्रह्म रंध्र, जिस द्वार से ब्रह्म में प्रवेश पाया जाता है, वो दसवें बंद किमड़िया, उसका किमाड़ा बंद। यहां तक तो साधन साधक को करना होता है, कहां तक कि अष्टामूल प्रकृति संयमित हो जाए, और ये प्रकृति जिन दरवाजों से भोगा जाता, नव इंद्रियों भली प्रकार ये संयमित हो जाए, ज्ञान के द्वारा, नाम जप और सूरत की डोरी लगाने के द्वारा, यहां तक तो साधक का पराक्रम। आगे भगवान मन बुद्धि से परे हम कैसे पहचानेंगे, मनुष्य पास मन बुद्धि और इंद्रिय आंखें छोड़ के है क्या, उनको कैसे देखोगे। इसलिए भगवान दसवां द्वार है ब्रह्मरंध्र, जिससे, जिस छिद्र से ब्रह्म में प्रवेश पाया जाता है, उसका किमाड़ा बंद। तो भला वो किमाड़ा कैसे खुले, तो खिड़की बैठी गोरी चितवन लागी, गोरी और काली दो होती, माया के दो भेद है, विद्या और अविद्या। आपकी चित्त वृत्ति जब विद्या से युक्त है तो गोरी, निर्मल अविद्या से युक्त है तो काली मलों से युक्त मलावरण विक्षेप से सनी हुई अंधकार के और बढ़ने वाली गोरी माने इष्ट उन्मो की प्रवृत्ति भजन आप स्त्री हो अथवा पुरुष शरीर कभी भजन नहीं करता है। शरीर तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मिल गया है। इस साधन करने के लिए एक धाम मिला, धाम माने घर मिला, निवास मिला। भजन आपसे अथवा माताओं से जब होगा, तुलसी अथवा मीरा से जब पार लगा तो इष्ट उन्मुखी लगन जागृत हुई, उसने भजन कराया तो 9 रूपी लड़की। इष्ट उन्मुखी प्रवृत्ति वो गोरी है, इष्ट उन्मुखी है तो सचमुच निर्मल है, गोरी है, साफ सुथरी है। तो ये भजन जब होगा तो इष्ट उन्मुखी लगन जागृत होगी, वो भजन कराएगी। इसलिए यह नारी संज्ञा दी है तो खिड़की बैठी गोरी चितवन लागी। तो परमात्मा के ब्रह्मरंध्र दसव इंद्रियों का संयम करके जब ब्रह्मरंध्र पर पहुंची तो वहां टकटकी लगा के लौ लगी ही रह गई धरत की तरह। तो लग गई झाप झलरिया की पिया तुरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली। और जहां लौ लगा ही रह गया साधक हताश नहीं हुआ, श्रद्धा का तार नहीं टूटा, तो भगवान इधर दृष्टि बनकर खड़े हो जाते हैं साधक में और सामने स्वयं नहीं समझोगे तो समझा लेंगे और अपनी झाप झालर के अंदर ले लेंगे, अपने में समाहित कर लेंगे। कुछ दूरी ऐसी है ईश्वर पथ में जो भगवान खुद ही इधर दृष्टि बन के सामने स्वयं खड़े होकर तय करते हैं। तो जहां किसके जगह लो लगी ही रह गई, चितवत ही रह गया, गोरी चितवन लगी कि प्रभु अब क्या दे, लो लगी ही रहेगी, श्रद्धा का तार नहीं टूटा। तो कुछ धक्का धुकी देके भगवान अपनी झाप झालर के अंदर कर लेते हैं, 10वें गेट के अंदर कर लेते हैं, ब्रह्म से संयुक्त कर लेते हैं, अविनाशी स्वरूप आत्म स्वरूप की स्थिति प्रदान कर देते हैं, जिसके बाद कुछ पाना शेष नहीं। अंत में कबीर कहता है कि ये सब मिलता कहाँ है सौदा, कैसे हम श्वास को पकड़े, कैसे संपूर्ण योग विधि सीखें, कैसे ज्ञान का संचार हो, कैसे नाम में सूरत की डोरी लगे, इसकी जागृति का स्रोत क्या है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के वचन बलि हरिया, सदगुरु के वचन पर बलि चढ़ जाओ, अपना बल हार जाओ। बल जानते हो, अपबल, तप बल, बाहुबल, चौथा है बल दान, आजकल सेठियों का नेताओं का वह बल, और सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। अपना बल, मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं पढ़ा लिखा, हार जाओ गुरु के चरणों में, उनकी वचन पर डट जाओ। गुरु की आज्ञा उलंघ के जो नरका हूँ जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है कहे कबीर विचार। यदि कदाचित कोई साधक गुरु के आदेश का उल्लंघन करके भटक गया तो काल के सीधा मुंह में जा रहा है, न कि कल्याण के लिए। बहुतों को भ्रम होता है हम भजन कर लेंगे, एक धोखा हो जाता है। और इसलिए गुरु की वचन बलि हरिया, गुरु जो आदेश देते हैं वाणी पर अपने को बलि चढ़ा दो, उनका मस्तिष्क ले लो, अपना मस्तिष्क समर्पित कर दो। हम बलि चढ़ गए, हम कट गए और वो बच गए। तो गुरु के वचन बलि हरिया, लेकिन वो बलि चढ़ने वाले हजारों में एक होता है। तो चतुर लोग मिली सौदा करी है, झंकत मूर्ख अनरिया की पिया तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली। चतुर लोग मिली सौदा करी है, सब चतुर ही तो बने। नेता लोग कहते हैं भैया देखा सुनो प्रधान जी, हमने तो पहले ही से 10 लाख रुपया अलग रख लिया था, मैं जानता था कि आगे हवा क्या होगी इलेक्शन की। बनिया कहता सुना, हमने तो बदली का रुख देख के तिल्ली को रोक लिया था अलसी को कि आगे भाव बढ़ने वाला। सब चतुर ही तो बने हैं काला सफेद करके चतुरा। तुलसी कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़े घूरे पड़े अचार, तुलसी राम भजन बिन चारों वर्ण चमार। वो चतुराई चूल्हे में जाए आग में गिरे, आपका आचार विचार सदाचार कूड़ा घूर में जाए। यदि एक राम का भजन नहीं है तो चारों वर्ण चमार सब चमड़ी के व्यापारी हैं। परिणाम निकलेगा फिर किसी न किसी चरम की योनि में जाना ही पड़ेगा, तो चमार नहीं तो क्या। पुनर्भि जननम पुनर्भि मरणम चमड़ी की खोल को ही सब धारण करना है, तो चमार नहीं तो क्या। चाम ओढ़ के ही चलना होगा, मोक्ष नहीं। इसलिए चतुर लोग मिली सौदा करी है, जो पूर्ण अनुरागी है पूर्ण विवेकी गुरु के प्रति समर्पित तो एक परमात्मा की चाह वाला है। ऐसे चतुरी लोग सौदा करेंगे। इस सभा मंडप में सब चतुरी तो हैं, ये चतुराई में कोई कमी नहीं है। जहाँ हमने सामियाना देखा, जहाँ अंदर की सजावट देखी, लोगों की श्रद्धा और भाव का वेग देखा, हमें लगता किसी में कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी कमी है साहस की। इंद्रिय प्रमथन स्वभाव वाली है, दुर्जय है। साहस बटोरने की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है, तो बेड़ा पार होगा। एक भक्त हुआ है, एक इंग्लैंड में यूरोप में एक हुआ नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत सी लड़ाई लड़ी, पूरे यूरोप को रौंद दिया उसने, लेकिन उसने कहा असंभव शब्द शब्दकोश से हटा दो, असंभव कुछ नहीं, मेरी तलवार में सब संभव। लेकिन भला साधारण जीव ही तो ठहरा प्रकृति का। एक दिन रूस के सिपाही उसका पीछा कर रहे थे, अंगरक्षक उसके छूट गए। अकेला नेपोलियन भाग रहा था और तीन सिपाही पीछा कर रहे थे शस्त्र लेके। वो पूरी तरह बेतहाशा भागते हुए एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। एक बुढ़ा दर्जी सिल रहा था। बोले भाई दर्जी, मैं तुम्हारा सम्राट नेपोलियन हूं, रूस के सिपाही मुझे जान से मार डालने के लिए पीछा कर रहे हैं, तुम मेरे प्राण बचा लो, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। दर्जी ने एक निगाह उसकी ओर देखा और इशारा किया, आओ पीछे पीछे आओ। अंदर एक सीलन भरी कोठड़ी, उसमें एक खटिया पड़ी हुई थी टूटी हुई, उस पर एक फटी कथरी पड़ी थी। कथरी उठाया और इशारा किया, लेट जाओ। लेट गया, ऊपर कथरी ओढ़ा दिया और कोने में जो कतरन का ढेर लगा हुआ था सारा ढेर लाकर उसके ऊपर डाल दिया और आके सिलने लगा। इतने में उस सिपाही पहुंचे, बोले क्यों, तुमने किसी योद्धा को इधर भागते देखा, नेपोलियन सम्राट को देखा। दर्जी ने सिर हिला दिया, बोले नहीं। इतने में निकाला एक हाथ लंबा छुरा, बोले साले मारेंगे तो इस पार से उस पार हो जाएगा, और कहीं इस क्षेत्र में छिपने की जगह नहीं, बोल कहां छिपाया। एक सिपाही तो धमका रहा था, एक सिपाही बाहर ढूंढ रहा था और दूसरा सिपाही चला गया। सिपाही मेरा योद्धा था बड़ा, अंदर कतरन को देखते उसे संदेह हुआ, ताजा उलट पुलट था ना, उस कतरन में 25 वार किया छुरा का उसने, सटाक सटाक सटाक। एक छुरा कथरी छेद के नेपोलियन के सीने से छू गया। थोड़ा प्रेशर ओवर होता तो खून से लथपथ निकलता और आश्वस्त होके तीनों सिपाही चले गए। अब नेपोलियन बाहर निकला, बोले क्यों, वो चले गए, बोले हाँ चले गए। इतने में नेपोलियन के अंगरक्षक भी दौड़ते हुए चले आए, बोले भाई दर्जी, तुमने अपने सम्राट के प्राण बचाए, इसलिए तुम तीन वरदान मुझसे मांगो, जो चाहो मांग लो, फिर जीवन में न तो कमाना पड़े न कभी मांगना पड़े। तो दर्जी बोला, जिस कोठड़ी में आपके प्राणों की रक्षा हुई वो बरसात में चूहा करती होकर मरम्मत हो जाए। तो नेपोलियन ने सोचा किसी पागल से भेंट हो गई क्या। बोले अरे भाई, अभी तुमने कुछ भी नहीं मांगा, तुम एक सम्राट से मांग रहे हो, तुम जो चाहो तो मांग लो दुनिया में, हमारे राष्ट्र का। नेपोलियन बहुत उदार था, वो राज कह देता तो राज सौंप देता। तो अब तुम्हारे पास केवल दो चांस है, एक बार और मांगो, अब मत चूकना। तो बोले आजकल हमारी औरत जो है उसके बाल झड़ रहे हैं, तो बढ़िया बालदार टोपी मिल जाती, थोड़ी सुघड़ लगत। नेपोलियन सोचा किसी पागल से भेंट हो गई क्या। बोले भाई, तुमने दो चांस खो दिए, एक चांस और है, अब जी भर के मांग लो, कुछ मुझसे मांगो, राजा से मांगो। तो दर्जी मुस्कुराया, तुम महल मांग लो हमसे, गांव मांग लो, स्टेट मांग लो, मांगो जी भर के। तो दर्जी बड़ा संतोषी था, मुस्कुराया, बोले जब छुरा आपकी छाती से छू गया था उस टाइम कैसा लगा आपको मन में? तीसरा वरदान उसने मांगा कि जब छुरा छाती से छू गया तो कैसा लगा? नेपोलियन एकदम क्रोध में आ गया, बोले कि सम्राट के हृदय का मन का हाल जानना चाहता है, इतनी बड़ी गुस्ता की सिपाहियों पेड़ से बांध के सुबह 7 बजे शूट कर देना इसको। सिपाहियों ने लपक के पकड़ा, घसीट के ले जा रहे थे, बोले भाई हमें कुछ मत दो, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने प्राण बचाए हैं, हमें हमारे प्राण छोड़ दो, कौन सुनने वाला है। घसीट के ले गए, पेड़ में बांध दिया। सुबह रात भर बेचारा दिन गिन रहा था, अपने समय के मिनट गिन रहा था। बड़े सवेरे उसको छुरा लेके, छुरे के मारना था ना, खड़ा हुआ, बोले 1, 2 और 3 में छुरा भोंकना ही था, दर्जी के तो श्वास ऊपर नीचे हो लगा। इतने में एक सफेद ध्वज लेके घोड़ा दिखाई पड़ा, 3 उसने बोला ही नहीं और तुरंत आया, घुड़सवार उतरा, पत्र नेपोलियन का निकाल के दिया, उसको खोल दिया, बोले भाई दर्जी तुम्हारे घर की मरम्मत हो गई, टोपी तुम्हारी औरत के पास पहुंच गई, और जब मौत का छुरा मुझे छाती से छू गया था उस वक्त मुझे अपने मन में कैसा लगा, अब तुम समझ गए होंगे कैसा लगता है। अरे वो तो मन की बात कोई कैसे समझाए, घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल हो तो अब तुम समझ गए, जब छुरा दर्जी को छू गया छाती में तब न समझ में आया कैसा लगता है, अब तुम समझ गए होंगे। बड़ा हाजिर मस्तिष्क था, तो जथा जब एक जीव राजा से नहीं मांग सकता, तो जथा दरिद्र विबुध तरु पाई बहुसंपत मांगत सकुचाई। एक महादरिद्र कल्प वृक्ष पा जाएगा तब वो बहुत संपत्ति मांगने में संकोच होता है, जीव में कहां क्षमता कि सत्य को समझे और मांग ले, कारण जीव के पास है क्या। गो गो चर जहां लगी मन जाए सो सब माया जाने ओ भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन कल्पना करता है, बुद्धि निश्चय करती, सो सब माया जाने ओ भाई। और मन बुद्धि और इंद्रियां छोड़ के है क्या आपके पास? कितना बुद्धि से अति इंद्रिय ज्ञान कह के टाइटल भले दे दो, लेकिन है तो माया, मन का सोचा बुद्धि का विचारा। इसलिए भगवान से मत मांगो कोई चीज, अनंत विभूति है प्रभु के पास, मत मांगो, वो कण के बराबर जो आप मांगोगे। भगवान से यदि मांगना है तो केवल भगवान को मांगो। इसलिए शरणागत साधक का एक ही फर्ज होता है कि ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरत गुरु के लक्षण जान, इच्छा रखे मोक्ष की ताही शिष्य पहचान। गुरु कैसा होना चाहिए? ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म से संयुक्त हो, ब्रह्म वक्ता, ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सके, सूरत साधक के श्वास को पकड़ के सूरत के साधना के पथ पर चला सके, ये तो गुरु के लक्षण। केवल मोक्ष की इच्छा रखता था इससे पहचान, मोक्ष माने परमात्मा, पूरा अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। और जहां प्रभु आ गए तो आप घाटे में नहीं, प्रभु आएंगे तो प्रभु की प्रभुता आपके और छा जाएगी। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की।